डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 23 अधिनियम 27 से 28 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 23 अधिनियम अध्याय 27 से 28 है। पॉल लंबे समय से रोम जाने के लिए उत्सुक था। हम इसे रोमियो अध्याय 15 में पॉल के स्वयं के लेखन में पढ़ सकते हैं, जहां वह कहता है, मुझे पहले यरूशलेम जाने की आवश्यकता है, वहां परेशानी हो सकती है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें, लेकिन उसके बाद मुझे रोम में आपसे मिलने की उम्मीद है। खैर, अधिनियम अध्याय 19 में भी एक भाषा जो यीशु की बहुत याद दिलाती है, अधिनियम 19:21, ल्यूक 9:51 की बहुत याद दिलाती है, जहां यीशु ने अपना चेहरा यरूशलेम की ओर रखा था। वह यरूशलेम की ओर जाने वाला था, यही उसकी योजना थी। वह अपने से पहले शिष्यों को भेजता है। खैर, प्रेरितों के काम 19 में पॉल ने योजना बनाई कि यरूशलेम जाने के बाद वह रोम जाने वाला था, और उसने अपने साथ काम करने वाले चेलों को भी भेजा। तो प्रेरितों के काम अध्याय 27 में अंततः वह रोम पहुंचने वाला है, संभवतः उस तरह नहीं जिस तरह उसने रोमन हिरासत में उम्मीद की थी। लेकिन पॉल वही व्यक्ति है, चाहे वह हिरासत में हो या हिरासत से बाहर। लेकिन आप जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूरे समय हिरासत में रहकर प्रचार करना पसंद करता है, शायद उसके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर भी कम से कम रोम में हम जानते हैं कि वह उन लोगों की सेवा करेगा जो उससे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वह घर में नजरबंद है। और वह प्रेरितों के काम अध्याय 24 में राज्यपाल को समय समय पर उपदेश दे रहा था। तो अधिनियम 27 में उसे समुद्र के रास्ते भेजा जाएगा। समुद्री यात्राएं खतरनाक मानी जाती थीं। यह उपन्यासों और इतिहास के कार्यों दोनों में सच था। वास्तव में यह इतना खतरनाक था कि जब आपके पास प्राचीन दैवज्ञ होते थे तो बहुत से लोग आपसे पूछते थे, अच्छा, क्या मेरी समुद्री यात्रा के दौरान कोई खतरा होगा? और लगभग पांचवें हिस्से में उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि समुद्र में अक्सर खतरे का सामना करना पड़ता था, और इसीलिए बहुत से लोगों को समुद्री यात्रा पसंद नहीं आती। पॉल स्वयं पहले ही कई बार जहाज बर्बाद कर चुका था, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों से देखते हैं। हालांकि एक्ट्स इस बड़े जहाज के लिए वह सब बचाता है, जहां ल्यूक स्वयं इसे देखने के लिए मौजूद है। अरिस्टार्खुस पॉल के साथ जाता है और ल्यूक पॉल के साथ जाता है। अब वे हमेशा लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं करने देते थे जो कैदी हो। कभी कभी वे नौकरों को उस व्यक्ति के साथ यात्रा करने देते थे, कभी कभी नहीं। लेकिन जाहिरा तौर पर जूलियस जानता है कि उसके आदेश यह आदमी है। हमें बस राजनीतिक कारणों से उसे यहां से बाहर निकालने की जरूरत है। वह शायद वास्तव में रोम के लिए खतरा नहीं है, और इसलिए ल्यूक, विशेष रूप से यदि यह कुलुस्सियों 4:14 का चिकित्सक ल्यूक है, तो उसे उसके साथ जाने की अनुमति दी जा सकती है। वह आसपास के कुछ अन्य लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। तो सेंचुरियन को कभी कभी इस तरह की किसी चीज के लिए लोगों के एक छोटे से विवरण के साथ भेजा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस समय उसके साथ 80 सैनिक हैं, संभवतः सैनिकों की काफी कम संख्या है, क्योंकि याद रखें, उन्हें रास्ते में सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना है। उसे इसकी मांग करनी होगी और कहना होगा, ठीक है, आप वहां हैं, कुछ भोजन या जो कुछ भी सौंपें। वे कैसरिया से एक जहाज लेते हैं, जो बहुत कठिन नहीं होगा, और स्वाभाविक रूप से वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, और अंततः वे एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां वे अलेक्जेंड्रियन अनाज जहाज को पकड़ने में सक्षम होते हैं। अलेक्जेंड्रिया से उत्तर की ओर बहुत सारे जहाज जा रहे थे और वे सीरिया के तट तक, एशिया माइनर के दक्षिणी तट तक आए। और फिर वे उस यात्रा की तरह कुछ करेंगे जिसके बारे में हम सुनने वाले हैं, सिवाय इसके कि वे आम तौर पर ऐसा नहीं करते थे। क्रेते से उन्हें आम तौर पर एक तूफान का सामना नहीं करना पड़ता था जो उन्हें इतनी दूर दक्षिण पश्चिम में उड़ा देगा। अलेक्जेंड्रिया के अनाज जहाज बहुत बड़े हो सकते हैं। दूसरी शताब्दी में ल्यूकन ने आइसिस नामक एक की बात की जिसका नाम फिगरहेड के नाम पर रखा गया था। तो अधिनियम 28 में आपके पास एक जहाज है जो कैस्टर और पोलक्स या जुड़वा भाई डायोस्क्यूरे हैं। लेकिन आइसिस नाम का एक जहाज था जिसमें 600 लोग सवार थे। खैर, पॉल का अंत एक अनाज जहाज में होने वाला है, इस कथा की शुरुआत में नहीं बल्कि अंतिम जहाज में जिसे वे पकड़ते हैं, जिसमें 276 लोग होंगे। यह आईएसआईएस से लगभग आधी संख्या है। तो यह एक काफी बड़ा अनाज जहाज है, हालांकि कई अन्य जहाज भी इतने बड़े थे और इसमें चालक दल के कुल मिलाकर 276 लोग शामिल हैं। लेकिन नौकायन के साथ जोखिम भी जुड़े हुए थे और वे जोखिम सर्दियों के दौरान विशेष रूप से सच थे। इसीलिए 2 तीमुथियुस अध्याय 4 में पौलुस कहता है, शीतकाल से पहले मेरे पास आने की जल्दी करो, क्योंकि शीतकाल के बाद मुझ तक पहुंचना सचमुच कठिन हो जाएगा और हो सकता है कि वसंत ऋतु में मैं जीवित न रहूं। इसलिए मैथ्यू 24:20 प्रार्थना करें कि सर्दियों के दौरान यरूशलेम से आपकी उड़ान न हो। सर्दी यात्रा के लिए एक कठिन समय था, यहां तक कि कई स्थानों पर जमीन पर भी, लेकिन समुद्र पर यह बहुत कठिन था। और कुछ लोगों ने सर्दियों के दौरान यात्रा की क्योंकि इसके लिए कुछ बड़े पुरस्कार थे। सम्राट क्लॉडियस अलेक्जेंड्रिया से रोम तक अनाज लाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने उन लोगों को विशेष बोनस भी दिया था जो अधिक कठिन समय के दौरान यात्रा करेंगे। तो यह इतना लाभदायक था कि कुछ मालिकों ने इसे जोखिम में डाल दिया, विशेष रूप से ऐसे मालिक जिनके पास कई जहाज थे और वे स्वयं जहाजों के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत महंगा बीमा था। मेरा मतलब है, बीमा के लिए बहुत अधिक लागत आती है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि जहाज कब डूब जाएगा। इनमें से कई जहाजों के कई नाविक मिस्र के गुलाम थे या ऐसे लोग थे जिन्हें यह जोखिम उठाना पड़ा क्योंकि उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं था। तो लोग यात्रा करेंगे, अभी सर्दी नहीं है। संभवतः फेस्तुस जुलाई में किसी समय 1 जुलाई को आया। संभवतः वह आधिकारिक तौर पर कार्यालय शुरू करेगा और संभवतः उससे पहले आ गया। लेकिन पॉल की सुनवाई शायद गर्मियों के दौरान तय हो गई थी। लेकिन किसी बिंदु पर अब पतझड़ के दौरान वे नौकायन कर रहे हैं। और पतझड़ में एक निश्चित बिंदु पर नौकायन करना और अधिक खतरनाक हो गया और जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ा। लेकिन यह एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक भिन्न हो सकता है। मेरा मतलब है, आप हमेशा भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, आप हमेशा भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मौसम कैसा होगा। और इसलिए ल्यूक यह उल्लेख करना चाहता है कि यह उपवास के बाद, प्रायश्चित के दिन के बाद था। इसलिए नौकायन सीजन में यह देर से हो रहा है। यदि वे पहले रवाना होते तो यह आवश्यक होता। यदि मालिक के पास पर्याप्त जहाज हो तो उन्हें शीघ्रता से आगे बढ़ाने का जोखिम उठाना उचित होगा। और इस प्रकार वे एशिया माइनर के दक्षिणी तट से लाइकिया और अन्य स्थानों तक पहुंच गए और वे तट के साथ साथ चल रहे हैं और अंत में वे क्रेते की ओर एक जहाज लेते हैं। लेकिन हवाएं सहयोगी नहीं रही हैं, इसलिए वे क्रेते के दक्षिण की ओर चले जाते हैं ताकि ऐसा न हो, उन्हें हवाओं से उतनी परेशानी न हो। और वे फेयर हेवेंस नामक बंदरगाह पर आते हैं जो एक प्रकार की विडंबनापूर्ण है, परंतु वे वहीं लाइकिया के निकट रहना चाहते हैं। वे वहां रुकना चाहते हैं क्योंकि ठीक है, वे वहां रुकते हैं क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो सुरक्षित है, लेकिन यह वास्तव में सर्दियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक छोटा बंदरगाह है। नाविक बहुत खुश नहीं है। यह एक छोटा सा समुदाय है। आप जानते हैं, एक छोटे से समुदाय में पिता अपनी बेटियों को गर्लफ्रेंड वाले नाविकों के लिए अस्थाई रोजगार के लिए उधार नहीं देना चाहेंगे। संभवतः उनके पास घूमने फिरने के लिए पर्याप्त वेश्याएं या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सवार लोगों का कहना है कि यह रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। यह बहुत छोटा समुदाय है। हम संख्या में बहुत बड़े हैं और इसलिए वे सर्दियों के लिए इस मछली पकड़ने वाले गांव से कहीं बड़े स्थान पर चले गए। इसलिए वे फीनिक्स के लिए अपना रास्ता बनाना चाहते हैं जो क्रेते के पश्चिम में तट से आगे हैं। और इसलिए वे बस एक छोटी सी यात्रा करने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तट ने काम किया है, आप खाड़ी के उस पार एक छोटी सी यात्रा कर सकते हैं। इस बंदरगाह से भूमि के किसी अन्य बिंदु तक बस कुछ ही घंटे की दूरी पर, बजाय इसके कि वहां तट को पकड़े। और यह अच्छा होता क्योंकि आकाश ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत बहुत अच्छा हो। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग शायद क्रेते के दक्षिणी तट से परिचित नहीं थे और पहाड़ों के बीच अचानक आने वाली हवा के झोंकों के बारे में नहीं जानते थे कि वहां कोई विशेष मौसम संबंधी या मौसमी समस्या थी जहां झोंके अचानक आ सकते थे। पहाड़ों के पीछे से आप उन्हें नहीं देख पाएंगे और वे पहाड़ों के बीच और भी अधिक ताकत से उड़ेंगे। और ऐसा ही होता है कि ऐसा तब होता है जब वे इस खाड़ी के पार नौकायन करने जा रहे होते हैं और यह उन्हें क्रेते से बहुत दूर समुद्र में और सामान्य रूप से जमीन से दूर ले जाने वाला होता है। अब यात्री संभवतः डेक पर हैं। डेक के नीचे वह जगह है जहां आप अनाज या अन्य चीजें रखेंगे। लेकिन साल के इस समय में एक अलेक्जेंड्रिया जहाज है। यह संभवतः विशेष रूप से अनाज है और यात्रियों को अपना खाना खुद लाना होगा। वे छत वगैरह पर सोते थे। हो सकता है कि बाद में कथा में आपने उन्हें तूफान के सबसे बुरे समय के दौरान नीचे रहते हुए पाया हो। यदि आपको वास्तव में ऐसा करना पड़े तो आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में यह दिलचस्प है कि भूमध्य सागरीय तूफानों के दौरान इस तूफान की पूरी कहानी में स्थान और दिनों की संख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम इस प्रकार की परिस्थितियों में भूमध्य सागर में यात्राओं के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के एक भूमध्य सागरीय नाविक की जेम्स स्मिथ के नाम से एक पुस्तक थी जिसने इसे स्थापित किया था और आज भी इसका हमेशा उल्लेख किया जाता है और इसे आज नौसेना संस्थानों आदि से ज्ञात कुछ अन्य सामग्रियों द्वारा पूरक किया जा सकता है। और साथ ही कई लोगों ने समुद्री पुरातत्व पर काम किया है और हमें जहाजों पर आधारित बहुत सी नई जानकारी प्रदान की है। हम नहीं जानते जहाजों के बारे में कुछ बातें हम उतना नहीं जानते हैं क्योंकि पानी के अंदर पाए जाने वाले जहाजों के मलबे में आमतौर पर जहाज का केवल निचला हिस्सा ही बचा होता है और माल कुछ माल। लेकिन किसी भी मामले में पॉल ने उन्हें चेतावनी दी, मुझे लगता है कि परेशानी होने वाली है। पॉल ने बहुत यात्रा की है लेकिन वे एक कैदी की बात क्यों सुनने जा रहे हैं? मेरा मतलब है वह वहां सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि वह जूलियस द सेंचुरियन से बंधा हुआ है। लोग कहते हैं ठीक है, पॉल वैसे भी वहां नहीं होगा। जब जहाज का कप्तान, नाविक और सेंचुरियन अपना निर्णय ले रहे हों तो पॉल वहां क्यों होगा? सेंचुरियन ने जहाज नहीं चलाया लेकिन वे उसकी सलाह चाहेंगे। वह एक रोमन सैन्य अधिकारी है तो वे क्यों होंगे? क्यों होंगे पॉल भी वहां? क्यों होंगे? खैर, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह आवश्यक रूप से निजी तौर पर किया गया है। हो सकता है आसपास और भी लोग खड़े हों। और फिर यदि पॉल जूलियस से जंजीर में बंधा हुआ है तो वह वहीं रहेगा। पॉल को यात्रा का भी काफी अनुभव है। वह एक रोमन नागरिक है। वह एक आंदोलन के नेता हैं। तो किसी भी मामले में पॉल अपनी राय देता है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सेंचुरियन जहाज के कप्तान और नाविक से अधिक उस पर विश्वास क्यों करेगा? और जहां तक आप आसमान को देखकर बता सकते हैं, सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन पॉल के पास आकाश को देखने की तुलना में जानकारी का एक अलग स्रोत था। प्राचीन साहित्य में कभी कभी अक्सर आपको लोग नौकायन से पहले देवताओं से प्रार्थना करते और बलिदान देते हुए मिलेंगे। वे देवताओं की कृपा पाना चाहते थे और वे कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्यवाणी करते थे कि यात्रा ठीक होगी। लेकिन अभी तक कोई भी पॉल पर उस स्तर पर विश्वास नहीं करता है। सेंचुरियन खुश हैं क्योंकि जिन जगहों पर वे रुके हैं वहां पॉल को दोस्तों से मुफ्त आतिथ्य मिला है। लेकिन जूलियस किसी देवता के प्रवक्ता के रूप में उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। खैर, जहाज दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ा दिया गया है। वे कौड़ा द्वीप के निकट पहुंचते हैं और वे बमुश्किल जहाज की नाव पर सवार हो पाते हैं। जहाज के पीछे एक नाव थी जो कभी कभी घसीटकर ले जाती थी। खैर, यह तूफान के दौरान टूट सकता है या तूफान के दौरान यह पतवार से टकराकर टूट सकता है, इसलिए वे इसे जहाज पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं, क्योंकि जब वे कौड़ा उरुक्विलो से गुजरते हैं तो यह बहुत तेज हवा होती है जो उन्हें उत्तर पूर्व से उड़ा रही है। वे आंशिक रूप से द्वीप द्वारा आश्रय पाते हैं उसमें से, तो उन्हें उड़ने से बचाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम वे इस नाव पर सवार तो हो सकते हैं। और यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम बाद में कथा में देखेंगे। यह छोटी सी नाव जीवन रक्षक नौका जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाती है, इसलिए उन्हें दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ाया जाता रहता है। और यह उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यदि वे उस रास्ते पर चलते रहे जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वे चल सकते हैं, तो वे सिर्टिस के उथले क्षेत्र के पास पहुंच सकते हैं। लीबिया के तट पर सिर्टिस का उथला क्षेत्र सिर्टिस माइनर सिर्टिस मेजर था। सिर्टिस की उथली गहराई से नाविक लंबे समय से डरते थे। वास्तव में उन्होंने पहले रोमन बेड़े में से एक को नष्ट कर दिया था जो कार्थागिनियों के खिलाफ नौकायन कर रहा था। वे उथले पानी में फंस गए। वे वहीं फंस गए और फिर जब पानी वापस आया तो जहाज डूब गए और वह विशेष रोमन नौसेना नष्ट हो गई। तो ये बहुत ही डरावनी बात थी। इसको लेकर कई किस्से प्रचलित थे और वे निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उन्हें सिर्टिस तक उड़ा दिया जाए, इसलिए वे उससे दूर जाने के लिए उत्तर की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह के जहाज उनके पास थे, जिस तरह की पालें उनके पास थीं, उनसे निपटना वाकई मुश्किल था। नेविगेशन के बारे में कुछ ऐसी चीजें थीं जो उन्होंने नहीं खोजी थीं और इसलिए वे निश्चित नहीं हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे बहुत अधिक प्रगति कर पाएंगे। वे हवा के संबंध में अंततः उसके साथ ही उड़ जाते हैं। वे पाल उतारना चाहते हैं। पाल निश्चित रूप से उनकी मदद नहीं कर रहे हैं और उन्हें कुछ चीजें समुद्र में फेंकनी होंगी। वे कुछ गेहूं पानी में फेंक देते हैं। गिट्टी के लिए उन्हें दूसरे गेहूं की जरूरत है। लेकिन किसी भी हालत में आपको सारा गेहूं पानी में नहीं मिलेगा। वास्तव में हम उन्हें कथा में दो बार गेहूं त्यागते हुए पाते हैं। जहाजों के काम करने के तरीके के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए वे शायद एक बकेट ब्रिगेड की तरह काम करते हैं। लेकिन वे इसे पूरा खाली नहीं कर सके। सबसे बड़े प्रकार के जहाजों जैसे कि ISIS जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था को इटली के बंदरगाहों में उतारने में पूरा एक महीना लग सकता है, इसलिए वे इसमें से कुछ खाली कर रहे हैं। उनके पास कुछ और जगह है लेकिन वे इसे खाली नहीं कर सकते। और चीजों को पानी में फेंकने के लिए ल्यूक ने कभी कभी स्पष्ट रूप से उनकी मदद की। उनका कहना है कि हमने इन चीजों को अपने हाथों से पानी में फेंक दिया। जब वे ध्वनियां लेते हैं तो ल्यूक स्पष्ट रूप से उनके साथ होता है। पॉल ने कहा है, हम सब बचाए जाएंगे। जहाज पर मौजूद सभी 276 लोगों को बचाया जाएगा। लेकिन हम बचाए जाने वाले हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक द्वीप पर फंसने जा रहे हैं। तो जहाज नष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। खैर, यह अच्छा है कि उनके पास जहाज की सामग्री का बीमा था। लेकिन वैसे भी जहाज का खो जाना और 276 लोगों में से किसी की भी जान न जाना काफी चमत्कार होगा। और कुछ यात्री संभवतः बीमार थे। उन्होंने उनमें से बहुत कुछ नहीं खाया था, ठीक है, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। ल्यूक इस सब पर नजर रख रहा है। सिर्फ इसलिए कि तूफान है इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी दिन और रात के बीच अंतर नहीं बता पाएंगे। हालांकि कभी कभी वे ऐसा नहीं कर पाते। वे तारे नहीं देख सकते, इसलिए वे उनका स्थान नहीं देख सकते। और जब वे ध्वनियां लेते हैं तो ल्यूक उनके साथ होता है। वे कुछ अलग सुन सकते हैं। भले ही वे अंधेरे में आ रहे हों, वे कुछ अलग सुन सकते हैं। और आपको कुछ चट्टानों पर ब्रेकर की आवाजें सुनाई देंगी जो माल्टा से काफी दूर थीं, लेकिन आप माल्टा की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने पास में कुछ जमीन के बारे में सुना। उन्होंने पानी के टूटने की आवाज सुनी और वे आवाजें सुनने लगे। और ये आवाजें वास्तव में बिल्कुल वैसी ही गहराई की हैं जिनके बारे में हम आज जानते हैं कि अगर ये आवाजें माल्टा में आ रही होती इन चट्टानों के पार जिसे आज सेंट पॉल खाड़ी कहा जाता है या कम से कम सेंट पॉल खाड़ी के पास कहीं होती। और जैसे ही वे ध्वनियां ले रहे हैं जिस तरह से उन्होंने ऐसा किया वे किसी बहुत भारी चीज को गिरा देंगे। यह बिल्कुल नीचे तक जाएगा लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा जहां से आप वास्तव में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको बता देगा कि यह नीचे कब पहुंचेगा और आपको नीचे से कुछ नमूने भी मिल सकते हैं। और फिर आप इसे ऊपर खींचेंगे और आप बता सकते हैं कि यह कितनी दूर नीचे था। तो पॉल उनसे बात करता है। और लोग कभी कभी कहते हैं, अच्छा पॉल तूफान के बीच में कैसे बोल सकता था। खैर, सबसे पहले तूफान हर समय समान रूप से तेज नहीं था। और दूसरी बात, एक संभावना जो कुछ लोगों द्वारा सुझाई गई है वह यह है कि पॉल वास्तव में होल्ड में बोल रहा था। यदि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अनाज फेंक दिया होता तो आप ढेर सारे लोगों को देख के ठीक नीचे ठूंस सकते थे। लेकिन दूसरी ओर वह शांति के दौरान डेक पर हो सकता है। हमारे पास प्राचीन काल के ऐसे बहुत से वृत्तांत हैं जिनकी आज की दुनिया में कल्पना करना हमारे लिए कठिन है जहां हमारे पास ध्वनि प्रवर्धन प्रणालियां हैं। लोग कभी कभी ऐसे काम करने में सक्षम होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जनरल सेनाओं से बात करेंगे। यह प्राचीन साहित्य में हर जगह मौजूद है। आप कह सकते हैं, ठीक है, ये सब काल्पनिक हैं। लेकिन भले ही सभी वृत्तांत काल्पनिक थे, अगर ऐसा कभी नहीं हुआ होता तो लोग इस कल्पना के साथ कैसे आते? जाहिर तौर पर जनरल कम से कम कुछ सेनाओं से बात कर सकते थे। हमने पढ़ा है कि कभी कभी पीछे के कुछ लोग वह सब कुछ नहीं सुन पाते जो वे कह रहे थे। लेकिन जनरलों ने सेनाओं से बात की। हमारे पास समुद्र में बात करने वाले लोगों के अन्य वृत्तांत हैं। और हाल के दिनों में इसका और अधिक परीक्षण किया गया है। उदाहरण के लिए जॉर्ज व्हाइटफील्ड, जो 1700 के दशक में एक प्रचारक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यह प्रतिष्ठित था कि व्हाइटफील्ड को एक मील दूर और उससे भी दूर तक सुना जा सकता था। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया और वह उतनी दूर जाकर खड़ा हो गया और निश्चित रूप से वह जॉर्ज व्हाइटफील्ड को सुन सकता था। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत आदमी है, मैं इस आदमी को जानना चाहता हूं। और उसकी व्हाइटफील्ड से दोस्ती हो गई, भले ही व्हाइटफील्ड एक इंजील ईसाई था और बेन फ्रैंकलिन एक आस्तिक था, लेकिन वे वास्तव में अच्छे दोस्त बन गए। खैर, वे किनारे तक कैसे पहुंचे? इसमें कहा गया है कि कुछ तैरने के लिए काफी मजबूत थे। कुछ लोग तख्तों पर आए। ये कार्गो होल्ड के तख्ते हो सकते हैं जिनका उपयोग कार्गो को अलग करने के लिए किया गया था। गेहूं बोरियों में हो सकता है। यदि यह बोरियों में होता तो जहाज के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर बोरियां एक प्रकार से आकार में प्रवाहित होती और यह बहुत हानिकारक हो सकता है। तो उनके पास इन्हें अलग करने के लिए तख्तियां थी वगैरह। अब जहां तक तट पर आने की बात है, ज्वार उनकी मदद करेगा और यह तख्तों के साथ भी सच है। तख्तियां बस होंगी, आप जानते हैं, आप उन्हें जीवन रक्षक जैकेट की तरह पकड़ सकते हैं और तुम्हें ज्वार द्वारा किनारे पर धकेल दिया जाएगा। ज्वार शायद भूमध्य सागर के बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन लहरें आपको अंदर ले जाती हैं। मैंने इस बारे में एक दोस्त से सलाह ली, उनकी पीएचडी इतिहास में है, लेकिन वह एक सर्फर भी हैं। और इसलिए उसने वास्तव में माल्टा के आसपास की समुद्री लहर की जांच की और बोली, हां यही तो होगा, लहरें आपको अंदर ले आएंगी। अब मैंने नाव के बारे में पहले उल्लेख किया था। आप जानते हैं, इसका मतलब यह होगा कि दिन के उजाले के दौरान, लंगर डालने के बाद दिन के उजाले के दौरान वे बस लाइफबोट का उपयोग कर सकते हैं और सभी को किनारे तक पहुंचाने के लिए कई यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन पिछली रात उस नाव के साथ कुछ तो घटित होना ही था और इसीलिए वे नाव का उपयोग नहीं कर सके। कुछ नाविकों ने निर्णय लिया कि वे जा रहे हैं, वे नाव को नीचे उतारना चाहते थे और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें लंगर की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। और यही वह चीज थी जिसे आम तौर पर एक अच्छा विचार माना जाएगा। मेरा मतलब है, आपको एंकरों की जरूरत थी। आप यह देखे बिना कि आप क्या कर रहे हैं, जहाज को किनारे के बहुत करीब ले जाने का प्रयास नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम चट्टानों पर फंस जाओगे और हो सकता है कि आप बहुत दूर चट्टानों पर फंस जाएं। इसलिए आपको ऐसे एंकर लगाने होंगे जो इतने उथले हों कि एंकर किसी चीज को पकड़ सकें। तो उन्होंने चार लंगर डाले और फिर उन्होंने आशा की और सुबह होने की प्रार्थना की, लेकिन नाविक नाव के साथ ऐसा करना चाहते थे। खैर, पॉल को स्पष्ट रूप से अलौकिक रूप से पता था कि कुछ और चल रहा था। वे नाव से भागने की कोशिश करने वाले थे, क्योंकि जहाज को चलाना कठिन होने वाला था। लेकिन आप जानते हैं, इस छोटी नाव की जरूरत नहीं है, उन्हें फंस जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सोचते हैं कि वे किनारे तक पहुंचने में सक्षम होंगे और यदि वे सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं और नाव के लिए प्रतिस्पर्धा होने वाली है या सुबह होने से पहले नाव के लिए प्रतिस्पर्धा होने वाली है तो नाव किसे मिलेगी? खैर, सिपाही तो तलवार वाले थे। इसलिए नाविकों ने निर्णय लिया कि जब तक संभव हो वे भागने का भरपूर प्रयास करेंगे। और पॉलुस कहता है, जब तक ये जहाज पर न रहें, कोई भी बचाया नहीं जा सकता। अब यहाँ हमारे पास पहले से ही भविष्यवाणी है कि हर कोई बचाया जाएगा, लेकिन यह एक सशर्त भविष्यवाणी है, यानी हर कोई बच जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप मेरी बात मानेंगे और उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तो वे सैनिक इस समय तक वे पॉल पर विश्वास करते हैं। वह अब तक हर चीज के बारे में सही रहा है। वह अब तक भगवान से सुन रहा है। अत उन्होंने रस्सियां काट दी और नाव को समुद्र में गिरा दिया, और अब कोई भी नाव का इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, इस मामले में नाविक इससे बच नहीं सकते। अब इसका मतलब है कि नाविक जहाज पर सवार होंगे, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाज को द्वीप के करीब ले जाने के लिए पर्याप्त रोशनी होने पर नाविकों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, और वे इसे पूरी तरह से किनारे तक लाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन वे इसे किनारे के बहुत करीब लाने में सक्षम होंगे जितना वे अंधेरे में कर सकते थे, और अन्य की तुलना में किनारे के बहुत करीब लाने में सक्षम होंगे। नाव पर मौजूद लोग संभवतः नाविकों की विशेषज्ञता के बिना भी ऐसा कर सकते थे। तो इस तरह से हर किसी को बचाया जाएगा। तो ज्वार लोगों को किनारे तक ले जाने में मदद करेगा। जहाज किनारे पर पहुंचने से पहले ही फंस जाता है और चट्टानों पर टूट जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, अगर ल्यूक के पास ये सभी नोट थे तो नोट कैसे संरक्षित हैं? यदि यह पपीरस होता तो ल्यूक का पपीरस क्षतिग्रस्त हो जाता, विशेषकर उस प्रकार का पपीरस जो इस अवधि में प्रमुख था। यह जलरोधक नहीं था, इसलिए स्याही धुल जाएगी। खैर, स्याही जलरोधक नहीं थी, इसलिए इसे धो दिया जाएगा। इसीलिए ठीक है, हाँ, वह और पपीरस पर पपीरस स्याही दोनों केवल मिस्र जैसे शुष्क जलवायु में या उस जैसे क्षेत्र में मृत सागर स्क्रॉल में जीवित रहे हैं। ल्यूक ने वेल्लम पर भी लिखा होगा, जो पपीरस से अलग है, लेकिन ल्यूक के पास एक कंटेनर भी हो सकता है। इन जहाजों पर बहुत सारे एम्फोरिस्क थे जो जलरोधक थे, जिन्हें कॉर्क या अन्य चीजों से सील किया जा सकता था। और अगर ल्यूक को पता होता कि वह नौकायन पर जा रहा है तो उसके लिए वैसे भी एक जहाज लाना समझदारी होती। तो जब वे किनारे पर जा रहे थे तो ल्यूक इसे अपने तख्ते या किसी अन्य चीज के ऊपर रख सकता था। ल्यूक के पास शायद कैसरिया में भी बैकअप रहा होगा। आम तौर पर यदि आपके पास एक प्रमुख लेखन परियोजना थी तो आप जानते हैं, यदि वह जानता है कि वह छोड़ने जा रहा है तो उसके पास इसे कॉपी करने का समय होगा, या हो सकता है कि किसी ने इसे कॉपी करने में उसकी मदद की हो। लेकिन यात्रा के दौरान ल्यूक के नोट्स भी संभवतः ठीक थे, क्योंकि विवरण बहुत सटीक हैं। बेशक यह हाल ही में हुआ होगा, ल्यूक को बस याद है, लेकिन यह काफी हद तक संभव है कि ल्यूक एक पत्रिका रख रहा था और उसने इसे अपने साथ किनारे पर बनाया था। यह निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वान सोचते हैं, और स्थलाकृति इसमें फिट बैठती है। जहां तक हम बता सकते हैं, उस अवधि के बाद से स्थलाकृति में कुछ बदलाव आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सेंट पॉल की खाड़ी में फिट बैठती है, जो वेलेटा के पास है, माल्टा द्वीप की वर्तमान राजधानी। कुछ अन्य सिद्धांत हैं कि उनका मतलब एक अलग माल्टा या एक अलग मोलाइट है, लेकिन कुल मिलाकर सबूत इस माल्टा का बहुत दृढ़ता से समर्थन करते हैं। खैर, जहाज में डूबे हुए लोगों का आतिथ्य सत्कार करना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वह आतिथ्य के सबसे आवश्यक प्रकारों में से एक था। इसके बारे में हम अन्य प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं। डियो क्राइसोस्टोम इसके बारे में इत्यादि के बारे में बात करते हैं। माल्टा वास्तव में व्यापार मार्ग पर था। अलेक्जेंड्रियन व्यापार के लिए वे उत्तर और फिर पश्चिम की ओर रवाना हुए, इटली जाने की कोशिश की। माल्टा क्रेते के बीच व्यापार मार्ग पर था और आप माल्टा या सिसिली जा सकते थे और फिर उत्तर में इटली जा सकते थे। अब वापसी के रास्ते में आप वर्ष के कुछ निश्चित समय में मिस्र के लिए अधिक सीधे मार्ग पर जा सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में अंततः उन्हें पता चलता है कि वह द्वीप माल्टा है, जो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वे जानते होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इन मौसम की स्थिति के तहत पहले कभी इस कोण से नहीं आया होगा। ठंड है और आग लगी हुई है, और पॉल खुद आग बुझाने में मदद कर रहा है, आग के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। शायद हल्की बारिश हो रही है, और ल्यूक स्थानीय लोगों को बर्बर कहते हैं, लेकिन उनकी दयालुता पर जोर देते हैं और उस शब्द का उपयोग करते हैं जिसे दार्शनिक मानवता के प्रेम के लिए इस्तेमाल करते थे। बारबेरियन कभी कभी अपमान था, लेकिन यह हमेशा अपमान नहीं था। इसका उपयोग यूनानियों द्वारा उन लोगों को नीची दृष्टि से देखने के लिए किया जाता था जो उनसे कमतर थे, लेकिन इसका उपयोग केवल उन लोगों के लिए भी किया जाता था जो ग्रीक भाषा नहीं बोलते थे। ये लोग संभवतः माल्टा द्वीप पर स्थानीय प्यूनिक भाषा बोलते थे, जिस पर कभी कार्थागिनियों का उपनिवेश था और अब यह रोम के अधीन था। आप इन बर्बर लोगों के स्वागत की तुलना उस स्वागत से कर सकते हैं जो पॉल को परिष्कृत एथेनियाई लोगों के बीच मिला था, और विशेष रूप से उस स्वागत के साथ जो उसे यरूशलेम में अपने ही लोगों के बीच मिला था। पॉल इन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है, और एक सांप निकलकर उसके हाथ पर चिपक जाता है। कुछ लोग कहते हैं, खैर माल्टा पर अब कोई जहरीले सांप नहीं है। शायद कुछ ऐसे सांप हैं जो जहरीले दिखते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जो जहरीला हो। शायद ल्यूक को नहीं पता था कि यह वास्तव में जहरीला नहीं था। खैर, आप हमेशा उस संभावना का मनोरंजन कर सकते हैं। सांप का काटना एक बहुत बड़ी बात थी, और चिकित्सकों को यह उन चीजों में से एक था जिनसे निपटने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वहां मानव निवास अब बहुत अधिक है। माल्टा में बहुत सारा वन क्षेत्र लुप्त हो गया है। इस बात को 2000 साल हो गए हैं। मैं ऐसी जगहों को जानता हूं जहां एक पीढ़ी पहले बहुत सारे सांप थे, और सांप अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें व्यवस्थित रूप से मार डाला है। तो यह एक पीढ़ी में हो सकता है। निश्चित रूप से यह कुछ हजार वर्षों के दौरान घटित हो सकता है। मुझे उन आधारों पर ल्यूक से पूछताछ करने का कोई कारण नहीं दिखता। सेंट पॉल खाड़ी आज भारी आबादी में है, लेकिन यहां कुछ लोग जो कुछ और देखते हैं वह है सत्ता मुठभेड़। कभी कभी आध्यात्मिक मुठभेड़ों को सांपों के साथ जोड़ा गया है, उदाहरण के लिए मिस्र में निर्गमन अध्याय 7 में। तो यह अधिनियमों में शक्ति मुठभेड़ का एक और मामला हो सकता है। चाहे इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक था या क्या यह सिर्फ एक सांप था जो ठंडा और कठोर था और गर्मी से पुनर्जीवित हो गया और पॉल के हाथ से चिपक गया, चाहे जो भी मामला हो, भगवान ने उसकी रक्षा की। अध्याय 28 पद 4। लोगों को आश्चर्य होता है कि शायद पॉल किसी चीज का दोषी था। देखो, वह समुद्र से बच गया और अब न्याय ने उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी है। उसके हाथ पर एक वाइपर बंधा हुआ है। आमतौर पर यह माना जाता था कि जहाजों के मलबे का इस्तेमाल दुष्ट लोगों को दंडित करने के लिए किया जा सकता है, और यदि आप जहाज की तबाही से बच गए तो आपको सजा देने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, पॉल बहुत दोषी व्यक्ति होगा, और कभी कभी इसका उपयोग अदालत में भी किया जाता था। यदि ये सभी आपदाएं आपके साथ घटित हुई तो शायद देवता यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आपको सजा मिले, लेकिन जो चीज अदालत में उसके लिए अच्छी साबित हो सकती है वह यह है कि इनमें से किसी भी आपदा ने वास्तव में पॉल को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सांप को झकझोर कर आग में झोंक देता है। न्याय को भगवान माना जाता था, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था। प्यूनिक हलकों में यह सच था। यह एक ग्रीक और रोमन देवता, दाइक, न्याय और प्रतिशोध की ग्रीक देवी भी थी, और रोम में न्याय का एक मंदिर था। तो वे देखते हैं कि न्याय ने उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन फिर जब वे देखते हैं कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो उनका मन बदल जाता है और वे कहते हैं कि वह अवश्य ही कोई देवता होगा। अब जहां मेरी पत्नी है, वहां सभी सांप जहरीले माने जाते हैं। हो सकता है कि वे सभी जहरीले न हों, लेकिन फिर भी धारणा यह है कि वे जहरीले हैं। और यहां यही धारणा है। यह एक जहरीला सांप था, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब यह विडंबना है। वे यह कहने से आगे बढ़ जाते हैं कि उसे अवश्य ही एक अपराधी होना चाहिए और स्वयं यह निर्णय लेने लगते हैं कि उसे अवश्य ही एक भगवान होना चाहिए। खैर, आपको देवताओं का बहुत आतिथ्य सत्कार करना था, और आपके पास अधिनियम अध्याय 14 में यह विडंबना है जहां वे उसे आतिथ्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वह एक देवता है। जब उन्हें पता चला कि वह नहीं है, तो उन्होंने उसे पत्थर मार दिया। लेकिन यहां आतिथ्य सत्कार बहुत सकारात्मक है। हमारे पास फिर से ल्यूक का हास्य है। अध्याय 12, रोडा ही एकमात्र ऐसी थी जो वास्तव में समझती थी। अध्याय 17 और श्लोक 18 में स्टोइक और एपिक्यूरियन गलत समझते हैं, और यहां ये स्थानीय लोग गलत समझते हैं, लेकिन वे उन्हें कुछ नकारात्मक के बजाय कम से कम कुछ सकारात्मक समझने की भूल करते हैं। पॉल उन्हें सही क्यों नहीं करता? पॉल शायद नहीं जानता। मेरा मतलब है, अगर वे स्थानीय प्यूनिक बोली बोल रहे हैं, तो शायद ल्यूक और पॉल इस तथ्य के बाद इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन किसी भी मामले में सेंचुरियन और जो लोग पॉल सहित उसके साथ हैं, उन्हें द्वीप के प्रमुख व्यक्ति पुबलियस से आतिथ्य प्राप्त होता है। पुबलियस एक रोमन नागरिक और लैटिन भाषी रहा होगा। हो सकता है कि वह पर्याप्त रूप से शिक्षित हो, संभवतः ग्रीक भाषा बोलने के लिए भी पर्याप्त शिक्षित हो। ऐसा कहा जाता है कि वह इस द्वीप का पहला आदमी था। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ प्रमुख होता है। मैंने पहले बताया था कि फिलिप्पी पहला शहर था जो एक प्रमुख शहर है। कभी कभी हम स्ट्रैबो और अन्य जगहों पर पढ़ते हैं कि कोई शहर पहला शहर है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह एक प्रमुख शहर था। कभी कभी अधिनियमों में कहीं और हम ग्रीक के पहले लोगों, किसी शहर के पहले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब सिर्फ बहुत प्रमुख लोगों से है। लेकिन माल्टा में कभी कभी इस अभिव्यक्ति का प्रयोग सर्वोच्च पद के लिए किया जाता था। तो वह माल्टा के गवर्नर हो सकते हैं। खैर, उसके पिता बार बार होने वाले बुखार और पेचिश से बहुत बीमार हैं। यह मलेरिया के एक रूप से हो सकता है। तब यह बहुत आम बात थी। तब वे उन शब्दों में बात नहीं करते थे। यदि आप हिप्पोक्रेटिक साहित्य, आहार और रोग, तीव्र रोग इत्यादि या अन्य प्राचीन चिकित्सा साहित्य पढ़ते हैं, तो वे अक्सर इन चीजों के बारे में केवल बुखार के रूप में बात करते हैं, और वे अक्सर पेचिश के साथ आते हैं। बार बार आने वाला बुखार जो आता जाता रहता है। हम आज भी उनमें से कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन वह बहुत गंभीर स्थिति में थे। वह एक वृद्ध व्यक्ति था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, विशेषकर पेचिश की बीमारी से। और इसलिए पॉल जाता है, उस आदमी के लिए प्रार्थना करता है, उस पर हाथ रखता है और पुबलियस का पिता ठीक हो जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, द्वीप पर अन्य लोग आना शुरू कर देते हैं और लोगों को ठीक करने के लिए लाते हैं। और जूलियस सूबेदार यह सब देख रहा है। पॉल के प्रति उनका सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए रोम पहुंचने पर उसके पास अदालत को देने के लिए एक अच्छी रिपोर्ट होगी। अब यह कथा बहुत करीब से ल्यूक अध्याय 4 की प्रतिध्वनि है, जहां यीशु पीटर की सांस को ठीक करते हैं और फिर वे लोगों को उपचार के लिए यीशु के पास लाना शुरू करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अधिनियमों में बाद में उपचार में गिरावट आती है। खैर, वे ऐसा नहीं करते। यह यही अध्याय 28 में है। कैसरिया में रोमन हिरासत में अपने वर्षों के दौरान पॉल शायद बीमारों के लिए बहुत अधिक प्रार्थना नहीं कर रहा था। हमारे पास अध्याय 22 से 26 तक कैसरिया और उसकी हिरासत को कवर करने वाले बहुत सारे अध्याय हैं। लेकिन जैसे ही वह प्रेरितों के काम अध्याय 28 में आता है, वह लोगों पर हाथ रख रहा है, वे ठीक हो रहे हैं। अंततः वे वसंत ऋतु की शुरुआत में ही दूसरे जहाज पर चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। यह 3 महीने का है, इसलिए यह नौकायन सीजन की बहुत शुरुआत है। लेकिन इस बार यह काफी बेहतर तरीके से काम करने वाला है, और इस बार उनके पास ज्यादा दूर तक जाने के लिए नहीं है। वे उत्तर की ओर सिसिली में सिरैक्यूज की ओर जा रहे हैं, जो एक प्रमुख स्थल, एक प्रमुख शहर था। इसकी स्थापना पहले यूनानियों द्वारा की गई थी और इस समय तक यह लंबे समय तक रोम के अधीन था। वहां से वे रेगियम जाते हैं, जो इटली के दक्षिणी सिरे पर है। सिसिली से रेगियम तक जाने के लिए आपको अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा, और फिर वे इटली के तट से पुतेओली तक जाते हैं, और वहां से वे रोम जाने के लिए भूमि मार्ग लेने जा रहे हैं। वे और भी आगे जा सकते थे। इस बिंदु पर क्वोर्गस ने ओस्टिया में एक नया बंदरगाह बनाया था, लेकिन किसी भी स्थिति में वे भूमि मार्ग अपनाने जा रहे हैं। इसमें से कुछ थोड़ा दलदली है, लेकिन वे वहां तक ठीक से पहुंच जाते हैं। और रास्ते में ईसाइयों के 2 समूहों में कई लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्हें ऐसे ईसाई मिलेंगे जिनके साथ वे रह सकते हैं, और रोम के ईसाइयों के कुछ समूहों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए यह बात उन स्थानों से आगे बढ़ी है जहां वे रुके हैं और आतिथ्य स्वीकार किया है। पॉल को शायद रोम जाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसे रोम जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जूलियस शायद पॉल को रोम ले जाने की जल्दी में नहीं है, यह जानते हुए कि वह एक कैदी बनने वाला है। अन्य कैदी शायद रोम जाने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि जब तक वे पॉल की तरह नहीं होंगे, रोमन नागरिक जिन्होंने सीजर से अपील की है, उन्हें संभवतः सार्वजनिक खेलों में फांसी देने के लिए रोम भेजा जा रहा है। यही कारण है कि जब सैनिक थे, लोग तैरकर किनारे पर जा रहे थे, तख्तों पर जा रहे थे, सैनिक कैदियों को मारने के लिए तैयार थे, क्योंकि खैर वे वैसे भी मरने वाले थे, और हमें उनमें से किसी को भी भागने नहीं देना है, अन्यथा हमें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ये ऐसी स्थितियां थीं जिनके तहत उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन राजनीति जो है, अगर कोई बलि का बकरा ढूंढ रहा होता तो उसे मार दिया जा सकता था। इसलिए उन्हें मारना अधिक उचित था, क्योंकि वे जंजीरों में तैर नहीं सकते थे। जंजीरें बहुत भारी होंगी। उन्हें अपनी जंजीरों से मुक्त करना पड़ा। और सूबेदार पहचानता है, ठीक है, ठीक है, हम पॉल को नहीं छोड़ सकते और उन्हें मार नहीं सकते, हमें इसका जवाब देना होगा, यह असंगत है। लेकिन वह पॉल को बचाना चाहता है, ताकि उसके कारण सभी कैदी बच जाएं। और इस तरह सभी 276 किनारे पर पहुंच गए। लेकिन अब जब वे रोम जा रहे हैं, तो आपके पास सेंचुरियन है, आपके पास सैनिक हैं जो उसके साथ हैं, आपके पास पॉल है जो अब उनके बीच एक नायक की तरह है, पॉल के साथी और फिर अन्य कैदी। अत स्थानों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। और साथ ही जैसे ही वह रोम पहुंचता है, लोग उसका स्वागत करने के लिए बाहर आते हैं। खैर, पॉल ने पहले रोमनों को अपना पत्र कोरिंथ से या तकनीकी रूप से शायद कैनक्री से लिखा था। उन्होंने इसे कैनक्री से भेजा जहां फोएबे चर्च के डायकोनोस थे। डायकोनोस का अनुवाद विभिन्न तरीकों से किया जाता है, इसलिए मैं इसे अभी के लिए डायकोनोस छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन वह चर्च की एक डायकोनोस थी और वह संभवतः व्यवसाय के सिलसिले में रोम की यात्रा कर रही थी और वह रोम में पत्र ले जाती है, इसलिए रोम की चर्च को पॉल के बारे में पता था। उसके कई दोस्त थे जो उससे पहले वहां जा चुके थे। हम इसे रोमियो 16 से देखते हैं। वर्ष 54 में जब क्लॉडियस की मृत्यु हो गई, नीरो सम्राट बन गया। आपके पास ऐसे बहुत से लोग थे जो यहूदी आस्तिक थे, जिन्हें इटली छोड़ना पड़ा, या यहूदी लोग जो अभी तक आस्तिक नहीं थे, जो कोरिंथ में आस्तिक बन गए, जिन्हें इटली छोड़ना पड़ा, अब वे इटली वापस जा सकते हैं। तो वे पहले से ही वहां हैं। पॉल के आने तक वे कुछ वर्षों से वहां हैं और लोग पॉल के बारे में जानते हैं। वे जानते हैं कि वह कौन है, उसके वहां संबंध हैं, और वह रोम से और भी पत्र लिखने जा रहा है। सबसे अधिक संभावना यह है कि उन्होंने फिलिपियंस और कुछ अन्य पत्र वहां लिखे होंगे। पानी की आपूर्ति के आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि रोम की जनसंख्या 4.25 मिलियन से भी कम है। मुझे लगता है कि इसकी अधिक संभावना है कि जनगणना, प्राचीन काल की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह 10 लाख थी। इसमें 2,50,000 नागरिक और परिवार तथा नौकर आदि, दास आदि होंगे। संभवतः रोम में लगभग 10 लाख लोग रहते थे। यह सामान्य अनुमान है। रोम में रहने की स्थिति में बहुत सारे मकान थे और बहुत सारे अपार्टमेंट भवन थे जिनमें निचले हिस्से में अमीर लोग रहते थे, और आप जितना ऊपर जाएंगे लोग उतने ही गरीब होंगे, किराया उतना ही कम होगा। इसमें अभी भी बहुत सारा पैसा लगा। कभी कभी सबसे निचली मंजिलों पर मेजनाइन अपार्टमेंट वाली दुकानें होती थीं जहां लोग रहते थे, लेकिन सबसे निचली मंजिल ही ऐसी थी जिसमें पानी बहता था और ऊंची मंजिलें जर्जर थीं। कभी कभी ये इमारतें ढह जाती हैं वगैरह। रोम के कुछ घरेलू चर्चों या अपार्टमेंट चर्चों में लंबे हॉलवे थे जो अलग अलग कमरों को जोड़ते थे जिनमें लोग सोते थे, और इसलिए आप कई लोगों को लंबे हॉलवे में ला सकते हैं, लेकिन आप आम तौर पर लोगों को इन उच्च स्तरीय अपार्टमेंट में नहीं ला सकते। इन कमरों में निवासियों के सोने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन घरेलू चर्च लंबे हॉलवे में मिल सकते हैं या वे भूतल के कुछ अपार्टमेंट में मिल सकते हैं। यहूदी निवासी, यह अनुमान लगाया गया है कि वे रोम का शायद 5% हैं। इसका अनुमान कम से कम 20,000, अधिक बार 40,000 से 50,000 के आसपास लगाया गया है, तो शायद 5%, शायद उससे भी कम। रोम का यहूदी समुदाय, हमने इस बारे में कुछ हद तक बात की जब हम अधिनियम 18:02 में निष्कासन को देख रहे थे, लेकिन अधिकांश यहूदी संभवतः ट्रांस तिबेरिनम में रहते थे। आज रोम में इसे ट्रास्टिवेर क्षेत्र कहा जाता है। पुनः, यदि आपकी भाषा इतालवी है और मैंने उच्चारण में गड़बड़ी कर दी है तो मुझे क्षमा करें। यह शहर के केंद्र से तिबर नदी के पार है। अधिकांश यहूदी समुदाय गरीब थे। उनमें से कई संभवतः तिबर नदी की गोदी में काम करते थे। वहां कई आराधनालय थे और उनमें से कई को उनके नाम से जाना जाता है। उनमें से एक जैतून का पेड़ प्रतीत होता है जो रोमियो 11 के लिए दिलचस्प है, हालांकि हम नहीं जानते कि वह आराधनालय किस काल से अस्तित्व में था, लेकिन वहां कई आराधनालय थे। अलेक्जेंड्रिया के विपरीत यहां का यहूदी समुदाय एकजुट नहीं था। रोम इसकी अनुमति नहीं देगा। वे नहीं चाहते थे कि प्रेटोरियन गार्ड या स्थानीय पुलिस बल को छोड़कर कोई भी समूह उनके शहर के भीतर एकजुट हो। रोम इसकी अनुमति नहीं देगा। तो आपके पास बहुत सारे आराधनालय थे, अलग अलग आराधनालयों के लिए अलग अलग नेता थे और कोई केंद्रीकृत यहूदी प्राधिकरण नहीं था। आपके यहाँ बहुत सारे ग्रीक भाषी अप्रवासी थे, प्रवासी भारतीयों के कई हिस्सों के निवासी एलियंस, प्रवासी भारतीयों के कई हिस्सों जिनमें कई यहूदी लोग भी शामिल थे, जिनमें से अधिकांश ग्रीक भाषी थे, हालांकि आपके पास कुछ लैटिन भाषी भी थे। आधे से अधिक निवासी जो यहूदी हैं, उनके लैटिन नाम हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहूदी समुदाय मुख्य रूप से ग्रीक भाषी रहा है। हम जानते हैं कि वहां बहुत से नागरिक थे, बहुत से यहूदी रोमन नागरिक। फिलो का उल्लेख है कि वहां यहूदी रोमन नागरिकों का एक पूरा समुदाय था। खैर, उनमें से अधिकतर शायद रोमन नागरिक थे क्योंकि वे पोम्पेय द्वारा गुलाम बनाए गए दासों के वंशज थे और फिर उन्हें मुक्त कर दिया गया था। हमने पहले भी उनके बारे में फिर से बात की है। लेकिन रोम में ज़ेनोफोबिया बहुत ज्यादा था। कुछ रोमन ऐसे थे जो वास्तव में यहूदी प्रथाओं को पसंद करते थे और उन्हें अपनाते थे, लेकिन रोमन, विशेष रूप से कुलीन रोमन, विशेष रूप से सब्बात, खतना और भोजन प्रथाओं से घृणा करते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पॉल को रोमियों को लिखे अपने पत्र में उन लोगों से निपटना पड़ा। और सवाल यह भी है कि यहूदी समुदाय को कम से कम कुछ अवसरों पर निर्वासन का सामना करना पड़ा था। मैंने पहले उल्लेख किया था कि कभी कभी ज्योतिषियों और अन्य लोगों को भगा दिया जाता था। खैर, टिबेरियस के तहत यहूदी समुदाय को निर्वासित कर दिया गया था। क्लॉडियस के तहत यहूदी समुदाय को कम से कम आधिकारिक तौर पर निर्वासित कर दिया गया था, हालांकि वे सभी शायद नहीं गए थे। और इसलिए रोमन इतिहास के बारे में कुछ टिप्पणियां और वहां का चर्च अपनी स्थापना के बाद से क्या अनुभव कर रहा था, संभवतः कम से कम यहूदी विश्वासियों पर वापस जा रहा है जो वहां चले गए, जो मूल रूप से रोम से थे, अधिनियम अध्याय 2 में। क्लॉडियस ने यहूदी ईसाई नेताओं को निष्कासित कर दिया वर्ष 49, और यह निष्कासन वर्ष 54 में क्लॉडियस की मृत्यु पर स्वचालित रूप से निरस्त कर दिया गया था। तो 5 वर्षों से आपको वह मिल गया है जो लगभग पूरी तरह से एक गैर यहूदी चर्च रहा है। फिर शायद हर कोई नहीं गया, लेकिन शायद अधिकांश यहूदी ईसाई चले गए। 64 यहूदी विश्वासियों के लौटने के 10 साल बाद नीरो ने रोम में सैकड़ों या हजारों यीशु के अनुयायियों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, उन्हें जंगली जानवरों को खिला दिया और रात में अपने शाही उद्यानों को रोशन करने के लिए उन्हें मशाल के रूप में इस्तेमाल किया। और फिर भी चर्च बाद में भी मजबूत था, इसलिए हमें यह आभास होता है कि रोम से कोरिंथ तक एक क्लेमेंट लिखे जाने के समय रोमन चर्च मजबूत था। यह केवल 15 वर्षों में चर्च की भारी वृद्धि का संकेत देता है। निष्कासन के कारण इस बिंदु तक यह ज्यादातर गैर यहूदी था, लेकिन इसका आधार यहूदी था। जब तक पॉल पत्र लिखता है तब तक यहूदी विश्वासी वापस आ चुके होते हैं। इसीलिए एक्विला और प्रिसिला रोम वापस आ गए हैं। इस समय वे इफिसस में उसके साथ थे, वे रोम में वापस आ गए हैं। वर्ष 54 में इस बिंदु पर बाद में ऐसा लगता है जैसे वे फिर से इफिसस वापस चले गए हैं। इसलिए पॉल ने इसके कुछ समय बाद रोमियों को पत्र लिखा। यह यहूदी ईसाइयों के निष्कासन के एक परीक्षण और दूसरे परीक्षण के ठीक बीच में है जब नीरो ईसाइयों को जिंदा जलाना शुरू करने जा रहा है। लेकिन जिस समय पॉल ने सम्राट से अपील की, कोई नहीं जानता था कि नीरो का क्या परिणाम होने वाला है। जब तक वह सेनेका द यंगर के संरक्षण में था, जो एक कट्टर दार्शनिक था, आत्मनियंत्रण पर बहुत जोर देता था, और ब्यूरस, जो प्रेटोरियन गार्ड का प्रमुख था, नीरो बिल्कुल ठीक व्यवहार करता प्रतीत होता था। जब वह सम्राट बना तब वह बहुत छोटा था। मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह से वह सम्राट बना, कम से कम टैसीटस के अनुसार वह यह था कि उसकी माँ एग्रीपिना ने सुनिश्चित किया कि सम्राट क्लॉडियस की मृत्यु हो जाए। उसे कुछ जहर मिला, इससे वह खत्म नहीं हुआ, जहरीले मशरूम, इसलिए उसने चिकित्सक को रिश्वत दी और उसने एक पंख पर कुछ जहर चिपका दिया और उसे ठीक करने के लिए कुछ करने का दावा करते हुए उसे उसके मलाशय में डाल दिया और उस जहर ने उसे खत्म कर दिया। बंद। खैर, सिंहासन के लिए एक और संभावित दावेदार था और वह ब्रिटानिकस था, जो क्लॉडियस और उसकी पूर्व पत्नी मेसलिना का बेटा था। तो ब्रिटानिकस का बर्फीले पानी से वास्तव में दम घुट गया। उनके पास सभी भोजन और पानी का परीक्षण करने के लिए नौकर थे और पानी जहरीला नहीं था, लेकिन पानी थोड़ा गर्म था, इसलिए उन्होंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाया। मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह से वह सम्राट बना, कम से कम टैसीटस के अनुसार वह यह था कि उसकी माँ एग्रीपिना ने सुनिश्चित किया कि सम्राट क्लॉडियस की मृत्यु हो जाए। उसे कुछ जहर मिला, इससे वह खत्म नहीं हुआ, जहरीले मशरूम, इसलिए उसने चिकित्सक को रिश्वत दी और उसने एक पंख पर कुछ जहर चिपका दिया और उसे ठीक करने के लिए कुछ करने का दावा करते हुए उसे उसके मलाशय में डाल दिया और उस जहर ने उसे खत्म कर दिया। बंद। उसे जहर दे दिया गया और उसने ब्रिटानिकस को रास्ते से हटा दिया। नीरो की शादी ऑक्टेविया से हुई थी, जो मेसलिना और क्लॉडियस की बेटी थी, और इससे उसके सत्ता में आने के बाद उसके शासन की गारंटी में मदद मिली। उसने उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया और उस गरीब महिला को मार डाला। थोड़ी देर बाद नीरो हाथ से निकल गया। बुरस गायब हो गया। सेनेका को वास्तव में तब तक फांसी नहीं दी गई जब तक कि वह नीरो की हत्या की साजिश में शामिल नहीं हो गया, क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन नीरो का नया गुरु सेनेका और बुरस होने के बजाय टाइगेलिनस बन गया और टाइगेलिनस उसका पुराना प्रेमी था। उन्होंने एक साथ मिलकर यौन रूप से बहुत सारी चीजें की। उन्होंने और भी बहुत सी चीजें की, गंदाई किस्म की चीजें। नीरो के बारे में हमने जो बातें सुनी हैं, उनमें से कुछ सच नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इतिहासकार हमें पिछली पीढ़ी की हर उस गंदगी के बारे में बताते हैं जो लोगों ने नीरो के बारे में प्रसारित की थी, लेकिन कम से कम उनमें से कुछ सच थीं, और एक कारण है कि सभी इतिहासकार सहमत थे इस पर। वैसे भी चीजों में से एक यह थी कि नीरो ने अपने दोस्त ओथो की पत्नी पापाया सबीना को ले लिया और उसे अपनी रखेल और अपनी पत्नी के रूप में लिया। जब वह गर्भवती थी तो उसे लात मारकर मार डाला और नीरो के बारे में बहुत सारी बुरी बातें थीं। वैसे भी नीरो अभी तक नियंत्रण से बाहर नहीं था, और मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि नीरो के नियंत्रण से बाहर होने से पहले शायद पॉल को रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाद में रोम में चर्च की एक बहुत मजबूत परंपरा के अनुसार पॉल और पीटर को रिहा कर दिया गया था। रोम में नीरो के अधीन उसे मार डाला गया, और जब वह वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गया तो उसे नीरो के अधीन मार दिया गया। लेकिन किसी भी स्थिति में पॉल का रोम में विजी प्रवेश, जनरल विजी होकर रोम में प्रवेश करेंगे। अंततः इस अवधि में विशेष रूप से सम्राट को विजी रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आपके पास पहले के लोगों का स्वागत इस तरह किया जा रहा था जैसे कि यह एक विजी प्रवेश हो। सिसरो, जब वह रोम वापस आता है तो हर कोई उसका उत्साहवर्धन करता है इत्यादि। यरूशलेम में यीशु के विजी प्रवेश को याद करें। यह एक विजी प्रविष्टि की तरह लग रहा है। कुछ लोग इसकी तुलना विजी प्रविष्टि से कर सकते हैं। खैर, पॉल अब रोम में प्रवेश करता है और लोग उससे मिलने के लिए बाहर आ रहे हैं और शहर वापस जाते समय उसका साथ दे रहे हैं। यह मिलने के लिए यूनानी शब्द का यही अर्थ है। यह आम तौर पर तब होता है जब आप किसी से मिलते हैं और आप उन्हें किसी स्थान पर वापस जाते समय एस्कॉर्ट करते हैं। यह ऐसा है मानो रोम के चर्च से दूतावास उससे मिलने आ रहे हों। तो ल्यूक बहुत ही सकारात्मक नोट पर समाप्त होने जा रहा है। वह पॉल की फांसी पर नहीं जा रहा है, लेकिन पॉल यहाँ हल्की हिरासत में है। उसे अपना खुद का किराए का क्वार्टर मिल गया है और वह अभी भी एक गार्ड से बंधा हुआ है, लेकिन ये रोम के विशिष्ट गार्ड प्रेटोरियन गार्ड के सदस्य हैं। वह एक रोमन नागरिक है। इससे उसे उतना फायदा नहीं होगा जितना पूर्व में हुआ था। रोम में अधिकांश लोग, ठीक है, रोम में बहुत से लोग रोमन नागरिक थे, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि फिलिप्पियों के अध्याय 1 और 4 में हम जो देखते हैं उसके अनुसार वह प्रेटोरियन गार्ड द्वारा संरक्षित था, या कम से कम यह सामान्य व्याख्या है जो मैं सोचना भी सही है। खैर, अध्याय 28 श्लोक 17 में पॉल वही करता है जो वह अन्य शहरों में करता है। कभी कभी लोग अधिनियम 13 को देखेंगे और अधिनियम 18 को देखेंगे जहां पॉल कहता है, अब से मैं अन्य जातियों के पास जा रहा हूं, लेकिन वह अभी भी प्रत्येक शहर में पहले यहूदी समुदाय के पास जाता है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि पॉल यहूदी लोगों को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहा है, लेकिन किसी भी स्थान पर वह अन्य जातियों के पास जाकर कहेगा कि यहूदी समुदाय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसलिए प्रेरितों के काम अध्याय 28 में यह पुस्तक के अंत में इसराइल की अस्वीकृति नहीं है। यह बस वही दोहरा रहा है जो पहले हुआ था। लेकिन पॉल यहूदी समुदाय के नेताओं से दोबारा मिलने के लिए कहता है। रोम के आराधनालयों के लिए कोई केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं है। वहां बहुत सारे अलग अलग आराधनालय थे, इसलिए वहां कई अलग अलग नेता आते थे। और कुछ को समस्याएं हैं क्योंकि यहूदी समुदाय कहता है, यहूदी नेता पॉल से कहते हैं, ठीक है, हम वास्तव में इस आंदोलन के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में बुरी बातें सुनी हैं, लेकिन हम इसके बारे में पहले से ज्यादा नहीं जानते हैं। खैर, इसका क्या मतलब है, वे इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। मेरा मतलब है, 49 में ही जाहिरा तौर पर मसीहा की पहचान के बारे में झड़पों के कारण यहूदी समुदाय के कम से कम कुछ सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया था। ल्यूक ने अध्याय 18:2 में इसका कारण छोड़ दिया है और वह यहाँ भी इस पर विचार नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस आंदोलन के बारे में नहीं सुना होगा। टैसिटस से हम जो जानते हैं और वहाँ कितने ईसाई थे, यह बहुत कम संभावना है कि उन्होंने आंदोलन के बारे में नहीं सुना होगा। वास्तव में वे कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में सुना है, उन्होंने बस अच्छी बातें नहीं सुनी हैं, लेकिन वे इसके संपर्क में नहीं हैं। निष्कासन के बाद रोम में चर्च काफी हद तक गैर यहूदी था। वे अब आराधनालयों वगैरह में नहीं जा रहे थे, और यहां तक कि अन्य लोगों के साथ भी जो वापस आ गए हैं, ठीक है, वे वहां मौजूद चर्च के साथ काम कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि वे आराधनालय के साथ संबंध बना रहे हों। और साथ ही मुझे लगता है कि ये नेता किसी सहकर्मी से इसके बारे में सुनना पसंद करेंगे। पॉल एक रुतबे वाला व्यक्ति है, वह आंदोलन के नेता हैं। वह रोम में चर्चों द्वारा पहले से ही आंदोलन में स्वीकार किए गए एक नेता हैं, जहां एक विला और प्रिसिला और अन्य वापस आ गए हैं। वह भी यरूशलेम से है, तो ऐसे कारण हैं कि वे पॉल से आंदोलन के बारे में अधिक सीधे सुनना चाहेंगे। लेकिन प्रतिक्रिया विभाजित है। यह थोक अस्वीकृति की बात नहीं करता है, लेकिन यह इसराइल के अभी तक मसीहा में विश्वास करने की बात नहीं करता है। यह केवल विभाजित प्रतिक्रिया की बात करता है। कुछ लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया और कुछ ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया, जो पहले भी हुआ था। और इसलिए यशायाह 6 से पॉल के उद्धरण पर ल्यूक चरमोत्कर्ष, लगभग चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जहां यशायाह के पास प्रेरितों के काम 9 में पॉल की अपनी बुलाहट के समान ही एक बुलाहट थी, जहां वह एक थियोफनी का अनुभव करता है। लेकिन फिर वह कहता है, इन लोगों के पास जाओ, उनके कान कुंद कर दिए जाएंगे, वे देख नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। यह एक पाठ है जिसे मार्क 4 और मैथ्यू 13 में भी उद्धृत किया गया है। लूक 8 वह इसे संक्षेप में उद्धृत करता है जब यीशु बोने वाले और मिट्टी के दृष्टांत में बोल रहा है, लेकिन वह इसे विशेष रूप से यहाँ के लिए बचाता है। यह कुछ ऐसा भी है जो जॉन के सुसमाचार में एक भूमिका निभाता है। एक आपत्ति जो लोग उठा सकते हैं वह यह है कि यदि यीशु वास्तव में मसीहा हैं, तो उनके अपने लोगों ने उन्हें गले क्यों नहीं लगाया या उनके सभी लोगों ने उन्हें गले क्यों नहीं लगाया। और प्रतिक्रिया यह है, ठीक है, कभी कभी भगवान ने अपने लोगों को कठोर होने की अनुमति दी और वचन बोलने से लोग और अधिक कठोर हो गए। जैसा कि पॉल रोमियो 11 में कहता है, इससे अन्य जातियों के पास जाने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है कि ल्यूक यहाँ भी इसी तरह की बात कह रहा है कि पॉल अन्य जातियों के पास जाने में सक्षम है। पत्रस ने कहा, मन फिराओ और प्रभु की ओर से विश्राम के दिन आएंगे। यदि सारा इसराइल मुड़ गया होता या संपूर्ण इसराइल बदल गया होता तो प्रभु लौट आए होते। इतिहास नहीं चलता, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इतिहास ने अन्य जातियों को और अधिक सुनने का मौका दिया, और इस पिछली सदी में हमने एक बड़ा बदलाव देखा है। एक काल से दूसरे काल तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों ने सुसमाचार को धारण किया और संजोकर रखा है। निस्संदेह पहली शताब्दी में इसकी उत्पत्ति मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया, यहूदिया और गलील में हुई, और फिर यह पूरे सीरिया, मिस्र और तुर्की में फैल गई। खैर, इनमें से कुछ अब सुसमाचार के लिए सबसे बड़े गढ़ नहीं हैं, हालांकि मिस्र और अन्य जगहों पर अभी भी कई ईसाई हैं। लेकिन सीरिया में सुसमाचार और सुसमाचार इन क्षेत्रों में फैल गया। अंततः यह पूर्वी अफ्रीका, अक्सुम तक फैल गया। यह दक्षिणी यूरोप में फैला हुआ है। यह पश्चिमी एशिया में और अधिक फैलता है। यह भारत तक जाता है। निश्चित अवधि में यह चीन जा रहा है। और कुछ प्रकार के व्यापारिक संबंध थे, चीजों की यात्रा के लिए रास्ते थे। मेरा मतलब है, दूसरी शताब्दी में हम ऐसे रोमन व्यापारियों के बारे में जानते हैं जो वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व में गए और वहां के लोगों द्वारा उन्हें चीन के शाही दरबार में ले जाया गया, जो उस समय वियतनाम को नियंत्रित करता था। बाद में सुसमाचार उत्तरी यूरोप, रूस आदि में फैल रहा है। इसलिए सुसमाचार विभिन्न स्थानों में फैलता रहता है। पिछली शताब्दी में सुसमाचार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और एशिया के कई हिस्सों में बहुत अधिक फैल गया है। ऐसी कई जगहें हैं जहां इसे अभी भी जाना है और अधिक फैलना है। लेकिन हम इसे अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर फैलता हुआ देखते हैं। लेकिन नए नियम में अभी भी यहूदी लोगों के मसीहा में विश्वास करने की आशा है। तो अच्छी खबर अंततः सभी लोगों के लिए है। और हम इसे इस तरह भी देखते हैं कि एक्स का अंत पॉल द्वारा अन्य जातियों के लिए इस मिशन के महत्व को दोहराने के साथ होता है। और फिर यह कहता है कि पॉल ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार और शिक्षा देना जारी रखा, और इसमें यह समावेशन है क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, अनुच्छेद की शुरुआत अंत में बात कर रहा है, साथ ही प्रेरितों के काम की पुस्तक के आरंभ में भी इसके बारे में बात कर रहा है। खैर, यहाँ वह अभी भी उसी संदेश का प्रचार कर रहा है जो यीशु ने प्रचार किया था, राज्य और जो यरूशलेम चर्च ने प्रचार किया था, संदेश की निरंतरता। और इसमें कहा गया है कि वह वहाँ अपने किराए के क्वार्टर में 2 साल तक रहे। खैर, 2 साल बाद क्या हुआ ल्यूक हमें नहीं बताता, लेकिन अगर 2 साल के भीतर मामले पर मुकदमा चलाने के लिए कोई नहीं आया तो संभावना यह है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि वे मामले पर मुकदमा नहीं चला सकते। फेस्तुस के अधीन वे उसे नहीं हरा सके। उन्हें बिना किसी बेहतर सबूत के रोम में उस पर मुकदमा चलाने का मौका नहीं मिलता। ल्यूक हमें दिखा रहा है कि पॉल के खिलाफ आरोप निराधार है। मेरा मानना है कि अंततः पॉल को फांसी दे दी गई। मेरा मानना है कि पादरी और अन्य प्रारंभिक चर्च परंपरा में हमारे पास जो जानकारी है वह सही है कि पॉल को इस मामले में रिहा कर दिया गया था और फिर बाद में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और तभी वह रोम की मैमर्टिन जेल में तथाकथित मौत की कोठरी में कैदी था और उसे फांसी दे दी गई क्योंकि वह एक रोमन नागरिक था, इसलिए उसका सिर काटकर शहीद कर दिया गया। परंपरा कहती है कि पीटर को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन चूंकि ल्यूक का अंत खुशी के साथ होता है तो मैं खुशी के साथ खत्म करना चाहता हूं कि ल्यूक का संदेश विरासत से मिशन की ओर है। हमें अपनी विरासत को कायम रखना होगा और यह नहीं भूलना होगा कि हम कहां से आए हैं। हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और पैगंबरों की विरासत से आए हैं। हम यीशु के मंत्रालय की विरासत से आए हैं। हम जेरूसलम चर्च की विरासत से आए हैं। लेकिन हमें सभी राष्ट्रों तक यीशु मसीह की खुशखबरी पहुंचाने का मिशन भी दिया गया है क्योंकि वह मानवता के सच्चे राजा हैं। वह संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता है। लोगों को उसकी जरूरत है। और प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत खुला है। यह अच्छी खबर का प्रचार जारी रखने के इस अच्छे नोट के साथ समाप्त होता है क्योंकि मिशन जारी है। मिशन की ताकत आज भी उतनी ही है जितनी शुरुआत में थी। उन्होंने हमें मिशन को पूरा करने के लिए आत्मा की शक्ति का वादा किया। यही वह शक्ति है जिसकी हमें अभी भी आवश्यकता है। और यदि हमें उस शक्ति की कमी महसूस होती है तो उस मॉडल को फिर से याद करें जो हमारे लिए दिया गया है, जिसे यीशु ने सिखाया था और जिसका उदाहरण अक्सर अधिनियमों में चर्च ने दिया था। यदि तू पवित्र आत्मा मांगे, लूका 11:13, तो तेरा पिता तुझे वह देगा। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम पर अपनी आत्मा उंडेले और फसल के लिए मजदूरों को बढ़ाए ताकि पूरी दुनिया तक हमारे प्रभु की महिमा और पृथ्वी के अंतिम छोर के उद्धार की खुशखबरी पहुंचाई जा सके। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 23 अधिनियम अध्याय 27 से 28 है।